वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नश्च प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। ओम ज्ञातविरांदस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामेहं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिताशिविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीयद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम चर्चा किए थे किस प्रकार ब्रह्मा जी विमोहित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेकों ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में विस्तार किया और ब्रह्मा जी को वासुदेव रूपों को दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद ब्रह्मा जी समझ गए हैं कि यही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का, जिस स्वरूप को देखते हुए ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को बछड़ों को चुराए थे। लास्ट सीन हुआ था, एक साल पहले की बात है, जब भगवान अपने हाथ में लेफ्ट हैंड में दही रईस लिए हुए हैं और आगे उसका रूप का वर्णन करते हैं श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद की। उनके ये लेफ्ट हैंड में तो है दही रईस है, लेकिन वो हाथ के नीचे जो गाय चराने का जो छड़ी होती है वो और बफेलो हॉर्न उसको भी अपने लेफ्ट हैंड के नीचे रखे हुए हैं। और ये जो उनका जो कमर है उधर एक कपड़ा से बांध के अपनी बांसुरी को धारण किए हुए है, वैसे जो भगवान का जो सुंदर वपु है उसी से ये सारे वासुदेव रूप प्रकट हुए हैं और वही वासुदेव रूप उनके अंदर वापस समा गए हैं। ब्रह्मा जी इस दृश्य को देख के उस सुंदर वपु भगवान का ये रूप है, ये दृश्य है, ये बाल गोपाल स्वरूप है, उसको प्रणाम करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में पहला श्लोक जिसको हमने कल उच्चारण किया, नौमीड्यते नौमीड्यते, नौमी ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नौमी मतलब मैं प्रणाम करता हूँ, मैं किसको प्रणाम करता हूँ, ते भ्रवपुषे अभ्रवपुषे, आपका जो वपु है, किस प्रकार का वपु है, अभ्रा, जो एकदम घने जो बादल का रंग वाला जो वपु है, आपहा भिवर्ती से अभ्रा बना है शब्द, तो नवमी ड्यते अभ्रा। तो सबसे पहला चर्चा करेंगे नवमी। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए सबसे पहला उन्होंने नवमी ये शब्द इस्तेमाल किया, मैं प्रणाम करता हूँ। प्रायः सारी प्रार्थनाओं में या प्रार्थनाओं का शुरुआत नवमी, नमामि, नमामीश्वरम, नमस्ये पुरुषम त्वाध्यमीश्वरम, तो सारे प्रार्थनाएं नवमी शब्द से, नमामि प्रणाम से शुरू होता है। उससे क्या इंगित किया जाता है कि मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका जो गुणगान भी कर रहा हूँ, ये गुणगान या प्रार्थना भी कर रहा हूँ, ये वैसे ही करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं शरणागत होके कर रहा हूँ। आई सरेंडर ऑन टू यू, मैं अपना सारा प्रयास को त्याग कर चुका हूँ, मैं पूरा आपका शरणागत हूँ। क्यों शरणागत हो रहा हूँ? क्योंकि आपको प्रार्थना करने की क्षमता भी मेरे पास नहीं है। इसलिए कोई प्रार्थना भगवान का तभी कर सकता है जब वो शरणागत हो। भले एक प्रार्थना करने की इच्छा भी हो, अगर शरणागति नहीं है वो प्रार्थना ठीक तरीके से निकलता नहीं है। तो इसलिए शरणागति प्रार्थना करने से पहले करना चाहिए। शरणागत हुए बिना कोई भी भक्ति का कार्य नहीं हो सकता। तो ये बात आप जानते होंगे कि नवधा भक्ति का जो श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पदसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये इतना हद तक हम जानते हैं, लेकिन आगे जो दो लाइन है वो नहीं जानते। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा, क्या कहा गया है? इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा, ये भक्ति का जो नव लक्षण है उसको कैसे संपन्न करना चाहिए? पुंस अर्पिता, भगवान को अर्पण करते हुए यानी समर्पण करते हुए करना चाहिए। समर्पण किए बिना कीर्तन, समर्पण शरणागति के बिना श्रवण, शरणागति के बिना कीर्तन, शरणागति के बिना स्मरण, ये सब सुकृति जरूर प्रदान करेगा लेकिन भक्ति नहीं प्रदान कर सकते, भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए श्रीपाद रामानुज संप्रदाय में भक्ति से श्रेष्ठ शरणागति को माना गया है। शरणागति जो है उसको भक्ति से भी श्रेष्ठ माना गया है। प्रपत्ति, ये उनका सिद्धांत है। उनका कहना यह है भक्ति के द्वारा आपको सुकृति प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होने को है, लेकिन ये शरणागति ये श्रेष्ठ है। एक तरीके से बोला जाए वो गलत नहीं है, क्योंकि भक्ति का वास्तविक फल शरणागति के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर के शरणागति के बारे में हम, शरणागति के जो सॉन्ग्स हैं, हम पिछली बार चर्चा किए थे, जो ये शरणागति के जो सॉन्ग्स है या उनके जो गीत है, वो जो भाव को हृदय में स्वीकार करते हुए भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तभी वो श्रवण कीर्तन का वास्तविक फल कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कुछ भक्त लोग श्रवण कीर्तन करते हैं लेकिन शरणागत नहीं है, तो उनका वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता है, उनके अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। तो ये अति महत्वपूर्ण है। इसलिए नवमी के बाद बाकी सब शुरू हुआ है। भगवान का रूप का वर्णन हो, लीला का वर्णन हो, उनका अनेकों जो भी चीज़ का वर्णन इस प्रार्थना में हुआ है, ये नवमी ये शब्द के बाद हुआ है। ये नवमी शब्द के द्वारा ब्रह्मा जी सरेंडर कर रहे हैं, अभी मैं थक गया हूँ, मैं अपना जो शक्ति से आपको मापने के लिए प्रयास किया, अभी मैं विफल हो गया हूँ, मैं अभी अपनी दीनता तो व्यक्त करते हुए वो प्रणाम किया। नवमी, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। किनको? ते। ते ये शब्द के द्वारा आचार्यगण कहते हैं कि ब्रह्मा जी दो चीज़ों को सूचित कर रहे हैं। एक कि मैं प्रणाम, ये जो वपु है आपका, ते मतलब ये जो सुंदर शरीर है, आपको ही प्रणाम कर रहा हूँ, मैं किसी और को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। यानी दूसरे शब्दों में, ये जितने भी वासुदेव तत्व आपसे उत्पन्न हुए, ये जो रूप उत्पन्न हुए थे जिनका दर्शन आपने मुझे अभी दिया है, उन रूपों का प्रणाम नहीं कर रहा हूँ मैं, ते रूपम, ये आपका ये जो रूप है उनका प्रणाम कर रहा हूँ। और एक किसके लिए प्रणाम कर रहा हूँ? आपको प्राप्त करने के लिए प्रणाम कर रहा हूँ। ये ते शब्द के अंतर ये दो बातें हैं। एक, ये जो सुंदर वपु है, बाल गोपाल वपु है, जो कन्फ्यूज्ड होके कहाँ है मेरे बाल ग्वाल बाल, कहाँ है मेरे बछड़े, आपकी बछड़ों और ग्वाल बालों की विरह में ढूंढते ढूंढते ये हाथ में जो पकड़े हुए है और दही रईस दे के दही चावल लेके घूम रहे हैं, ये जो वपु को प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों प्रणाम कर रहा हूँ? उस वपु को प्राप्त करने के लिए, उस वपु का दर्शन प्राप्त करने के लिए या उस वपु का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। और श्रीपाद विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि ब्रह्मा जी का ये कहना है ये थे शब्द के द्वारा कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। क्यों भगवान को क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं? कि भगवान प्रसन्न नहीं है क्या? तो भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना क्यों करेंगे? क्योंकि सारे अपराध से मुक्त होने के लिए। क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि अभी ब्रह्मा जी डरे हुए हैं। कभी कभी आप किसी से प्रेम करते हो, वो प्रेम में एक प्रकार का डर उत्पन्न होता है, कहीं दूसरा व्यक्ति नाराज तो नहीं ना। तो ये जो भय है भक्त का, ये भक्ति में बहुत अनुकूल है, कहीं भगवान मेरे से नाराज तो नहीं ना। जैसे कभी गुरु महाराज आते हैं या अन्य भक्त है, वरिष्ठ भक्त है, वो कभी आप मान लीजिए कुछ गलती कर दिए तो तुरंत डर लगता है मेरे से नाराज तो नहीं ना। ये जो भाव है ये अति महत्वपूर्ण है। ऐसा जो डर अपने हृदय में स्वीकार करता है वो निश्चित रूप में भक्ति में अति शीघ्र प्रगति करता है। जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का डर नहीं है, हाँ चलता है कि हो जाएगा, गलती क्या है, क्या पड़ता है, तो इस प्रकार की भाव रखता है वो उधर का उधर ही रह जाता है। ये बड़ा सूक्ष्म विचार है। ये कुछ भक्तों में देखा जाता है, देखने के बाद भी उसको ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता है, लेकिन ये बात ध्यान में रखे, ये अति महत्वपूर्ण बात है। इतना हद तक कि ये जो भाव है कहीं दूसरा मेरे से नाराज़ तो नहीं ना, ये डर जो है ये माताओं में अधिक देखा जाता है, ये पुरुषों में ज़्यादा देखा नहीं जाता है। तो इसके बल पे वो बहुत जल्दी प्रगति कर लेते हैं, भले उनके पास कोई ज्ञान ना हो, बुद्धि ना हो, कुछ भी ना हो। ये जो डर है कि मेरे से भगवान नाराज़ तो नहीं ना, मेरे से मेरे गुरु नाराज़ तो नहीं ना, ये जो डर से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। ये बात को श्री विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं आउट ऑफ फियर कि मेरे अपराध से भगवान नाराज़ तो नहीं ना। वैसे तो भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह, एक साल तक उन्होंने बहुत सारे लीलाएं किया, उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई अप्रसन्नता नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त हमेशा ये सोचता है कि मेरे से अपराध हो गया है, उसकी वजह से ये जो डर है वो हमारा भक्ति में बड़ा अनुकूल है। नौमीड ये थे, ये ते का व्याख्या इस प्रकार किया हुआ है। तो आगे तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अच्छा ये जो वपु है, तो भगवान प्रश्न पूछ सकते हैं क्या किसको प्रणाम कर रहे हो? तो प्रणाम ब्रह्म को कर सकते हो, क्योंकि ब्रह्म में मेरे में कोई अंतर नहीं है, परमात्मा को भी कर सकते हो। तो ब्रह्मा जी ने विशेष तरीके से कहा, नहीं, मैं वपु, आपका ये जो वपु, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। वपु मतलब अब्र वपु, वपुषे, वपु मतलब शरीर, यानी मैं ब्रह्म को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, सर्वव्यापी ब्रह्म है जो सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा है, उनको प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं सारा अपनी प्रार्थनाओं का मूल केंद्रित कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ माय प्रेयर्स कौन है? वो अभ्र वपुषे। अभ्र वपुषे मतलब जिनका वपु घने बादल के समान है, जो घने बादल के समान जिनका शरीर है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, यानी भगवान की स्वरूप को प्रणाम कर रहा हूँ, ये अव्यक्त ब्रह्म का नहीं प्रणाम कर रहा हूँ। तो आचार्यगण इसकी टीका में लिखते हैं कि भगवान का शरीर को तुलना किया गया है घने बादल के समान। क्यों तुलना किया गया है? तो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि एकदम ज़मीन सूखा हुआ रहता है, गर्मी से पीड़ित रहता है, जब घने बादल से जब बारिश आता है, वो ज़मीन जो है, भूमि जो है, वो खिल जाता है, बहुत सुंदर अनेकों प्रकार के घास के द्वारा और वृक्ष फल फूल के द्वारा खिल जाता है। उसी प्रकार इस जगत में सारे जीव भौतिक ताप से पीड़ित है, सूख गए, और जब बड़ा सौभाग्य से भगवान का जो सुंदर वपु का दर्शन प्राप्त होता है, उस वपु से कृपा का बारिश होता है। जब ये कृपा का बारिश के द्वारा हमारा जो सूखा हुआ जीवन जो है वो खिल जाता है। इसलिए प्रत्येक जीव को भगवान का दर्शन करना चाहिए, ये सुंदर वपु का दर्शन करना चाहिए जो अभ्र वपुषे। अभ्र शब्द का ये जो संधि है इस प्रकार है, समास इस प्रकार है, आपह बिभर्ति, इसे अभ्र बना है। बिभर्ति मतलब भरा हुआ, आपह मतलब जल, जो जल से भरा हुआ, जल से भरा हुआ क्या है, बादल है, तो घने बादल है, घने बादल के समान भगवान का वपु है। सब लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान का जो शरीर है उनका तुलना किया गया है सुंदर घने बादल के साथ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या क्या कारण क्या है? तो उसका कलर ऐसा है, लेकिन उसके पीछे एक दार्शनिक कारण ये है। कारण यही है कि जिस प्रकार बारिश आते एकदम गर्मी से राहत हमको प्राप्त होता है, तो बारिश को प्रदान करने वाला कौन सा बारिश प्रदान करने वाला, कृपा का बारिश को, सुंदरता का कृपा जो है। अनेकों भगवान जो अनेकों गुणों से संपन्न है, वो सारे गुण जो है भगवान के रूप में समा गए हैं। जब उस रूप का दर्शन करने के लिए मंदिर में आता है तो तुरंत हमारा हृदय में जितने भी ताप है वो सब कुछ अपने आप मिट जाता है, वो गर्मी मिट जाता है और शांति का अनुभव होता है। इसलिए ब्रह्मा जी इस बात के द्वारा सारे जगत को कह रहे, आप आओ दर्शन करो इस सुंदर वपु को जो घने बादल के समान है, हमेशा देना चाहते हैं भगवान, हमेशा देना चाहते हैं। तो ये एक ही व्यक्ति है जो जगत में जो दे सकते हैं और देना भी चाहते हैं। हम इस जगत में जैसे साधारण जीव है वो क्या कर सकते हैं, वो मान लो देना भी चाहते थे क्या देंगे, उनके पास है क्या? अधिकांश लोग तो देना ही नहीं चाहते, सब लेना ही चाहते हैं। लेकिन भगवान ऐसे हो, दे भी सकते हैं और देने का सामर्थ्य भी है और साथ साथ में वो देते भी हैं, उनका देने का उदार स्वभाव, उदार ही स्वभाव है उनका। तो वह पूछे, तब कोई प्रश्न उत्पन्न कर सकता है, भगवान ब्रह्मा जी से कह सकते हैं, ब्रह्मा जी अच्छा अभ्र वो पूछे तो मेरा ही नहीं है बल्कि अनेकों विष्णु तत्वों का भी है। ये जो सुंदर घने बादल का जो स्वरूप है खाली कृष्ण का ही नहीं है, कृष्ण के अनेकों जो स्वरूप है विष्णु तत्व का भी है और नारायण का भी है, और कभी कभी भगवान रामचंद्र भी इस प्रकार का रूप है उनका, तो क्या उनको तो प्रणाम नहीं कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी खास करके कहते हैं कि नहीं, तडिदम्बराय गुंजावतम सा, तो आगे तडिदम्बराय ये बात कहते हैं, मतलब अम्बराय आकाश में जब लाइटनिंग आता है, जब बादल घने बादल के साथ साथ में ये जो बिजली चमकती है, ये जो बिजली जो है भगवान के जो वस्त्र के द्वारा तुलना किया गया है। भगवान के जो वस्त्र है उनके जो पीतांबर वस्त्र है वो बिजली के चमक जैसा है, यानी जब आकाश में कोई भक्त दर्शन करता है खास करके जब बिजली चमकता है घने बादल है, तो तुरंत उनका स्मरण होना चाहिए कृष्ण का। ये बादल जो है वो कृष्ण है और बिजली जो है कृष्ण के जो उनके जो वस्त्र है जो पीतांबर वस्त्र है। आप साथ में सच में देखेंगे कि आजकल तो इतना बहुत इतना बढ़ गया, आकाश में कभी प्राय उठ के देखता भी नहीं, दिखता भी नहीं, तारे चांद सूरज कब देखा किसी को मालूम ही नहीं है, कब लास्ट व्हेन डिड यू सी द स्टार्स लास्ट मालूम नहीं, क्योंकि घर में रहता है, घर से कार में बैठता है फिर वापस ऑफिस में जाता है फिर वापस घर में आता है। ऊपर तारे हैं चांद है वो केवल पढ़ता है, चांद तारे किताब में है ऐसे पढ़ता हो, प्रत्यक्ष में कभी देखता नहीं होगा। लेकिन भक्तों को प्रकृति को देखना चाहिए, क्योंकि आगे एक प्रभुपाद जी ने एक लिखता था लाइट ऑफ भागवत करके लिखे हैं, उसके अंदर वृंदावन की प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका तुलना बहुत दार्शनिक तरीके से करते हैं, उसको समझना ही बहुत मुश्किल है। वो लाइट ऑफ भागवत करके सबसे पहला किताब है, प्रभुपाद जी जब अनेकों ग्रंथों की रचना की वो सबसे पहला ग्रंथ है लाइट ऑफ भागवत करके, उसको कभी पढ़िएगा। बहुत दार्शनिक तरीके से बताया गया है कि वृंदावन में जो प्राकृतिक सौंदर्य है किस प्रकार अनेकों सिद्धांत के साथ तुलना किया जा सकता है। खैर इधर तो भगवान का रूप का वर्णन है, जब आप आकाश में देखते हो घने बादल को देखते ही कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु एक बार लीला कर रहे थे, तुरंत ऐसे आप जैसे बंगाल में ऐसा होता है और मायापुर में भी, खास करके जुलाई में जाओगे तो इतना बहुत गर्मी रहता है, इतना गर्मी रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, सहन नहीं कर सकते हो। लेकिन कभी कभी दो मिनट में ऐसा वातावरण बदली हो जाता है कि घने बादल छा जाएंगे, ठंड लगने लग जाता है, आप कंबल भी ओढ़ना पड़ेगा और एकदम भयानक सब बारिश गिरने लग जाएगा और हवा बहने लग जाएगा, ऐसे तुरंत मौसम चेंज होता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु एक बार जा रहे थे, तुरंत आकाश में घने बादल को देख के मूर्छित हो गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण का स्मरण हुआ। तो बिजली का चमक जो किसके बराबर है, वो भगवान के जो वस्त्र है, हाँ, पीताम्बर वस्त्र, उसके बराबर है। तो भगवान का जो आर्ग्यूमेंट हो सकता है ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? मेरा जो विष्णु तत्वों को प्रणाम कर रहा हूँ मैं, विष्णु तत्व का भी तदिम्बर आया तद, ये जो आभृत वपुषे तदिम्बर तदिम्बर आया, ये जो है ये उन स्वरूपों पर ही वर्णन कर रहा है, ये गारंटी क्या, ये मेरा ही वर्णन कर रहा है। तो ब्रह्मा जी होश में आए, बोला नहीं नहीं नहीं, ये जो स्वरूप है घने बादल का स्वरूप है और साथ साथ में आप पीताम्बर वस्त्र भी धारण किए हो, लेकिन साथ साथ में क्या है, गुंजावतंश, गुंजा माला भी धारण किए हैं। तो गुंजा माला तो कौन धारण किया, रामचंद्र तो धारण नहीं किए और विष्णु तत्व तो धारण नहीं किए हैं, और कोई अन्य अवतार भी धारण किया, तो ये जो मेरा प्रार्थना है खास करके ये जो बाल गोपाल वपु है उन्हीं के लिए है, गुंजा माला को धारण किए है, गुंजावतंश। ये जो गुंजा माला है, ये बेरी, इसको गुंजा फ्लावर्स बोला जाता है, ये जंगल में ही पाए जाते हैं, और आप जंगल में जाओ अभी भी कहीं कहीं इधर प्राप्त होता है, बहुत सुंदर छोटे छोटे फूल रहते हो, उसके द्वारा भगवान माला ग्वाल बाल उन माला बनाते हैं और भगवान को पहनाते हैं। गुंजा माला, ये गुंजा बड़ा सुंदर फूल है, वो जंगल में प्राय प्राप्त होता है। तो इधर श्रीपाद विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं गुंजावतंस, ये शब्द के द्वारा ब्रह्मा जी ये गुंजा माला का, गुंजा फूलों का वर्णन कर रहे हैं, उनका श्रेष्ठता का वर्णन कर रहे हैं। वैकुंठ में अनेकों अनेकों आभूषण भगवान धारण करते हैं, इन अनेकों आभूषणों से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है गुंजा माला। गुंजा पुष्प है वो सस्ता माना जाता है, अनेकों पुष्प बहुत महंगा है, लेकिन गुंजा माला जो बहुत सस्ता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरीर को सुसज्जित किया है और ग्वाल बालों में ने उनको भगवान को पहनाया है, इसलिए उसके सामने वैकुंठ का आभूषण भगवान जो धारण करके, मुकुट धारण करके, अनेकों प्रकार के वैढूर्य धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि जो है वो धारण करते हैं, वो मणि से भी बढ़कर है गुंजा। क्यों? क्योंकि प्रेम से ये ग्वाल बालों ने साक्य रस में भगवान कृष्ण को ये पहनाया है, तो कृष्ण के लिए अति प्रिय है, उनके सामने कितने भी ज्वेल्स हो गए। इसलिए भगवदगीता में भगवान क्या कहते हैं कि ये भूमि कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम युमे भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रथम अष्टामी प्रेतात्मनः। ये जो शब्द है प्रेतात्मनः अति महत्वपूर्ण है। क्यों? ये भक्ति के द्वारा बहुत प्रयास करके मुझे अर्पण किया, जल काफ़ी है और केवल कुछ पुष्प काफ़ी है, पत्रम पुष्पम ये पुष्प है, उसके सामने कितना भी, उन्होंने क्या ये नहीं कहा कि मुझे ऐश्वर्य से अनेकों चीज़ों का अर्पण करेगा तभी स्वीकार करूँगा, भक्तिया। तो भगवान भक्ति देखते हैं, खास करके ये जो साक्ष्य भक्ति है, जिस प्रकार क्योंकि जंगल में अभी आए हैं तो यशोदा मई तो उनको सजाती है, लेकिन ग्वाल बाल क्या करते हैं, यशोदा मई का सजावट को भी निकाल देंगे कृष्ण के चेहरे से, शरीर से निकाल के उनको जो जंगलों में जो प्राप्त हुआ पुष्प है पत्ता है वो सब लेके उनको सजाएंगे, एक बार नहीं 10-15 बार सजाते रहेंगे। तो ऐसे गुंजा माला का जो श्रेष्ठता है उसका वर्णन करते हैं। करने के बाद परिपृच्छ लसन्मुखाय, परिपृच्छ क्या धारण किए आप, मोर पंख को धारण किए। ये मोर पंख भगवान जो धारण करते हैं, ये इसका वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं वैकुंठ लोकों में इतना हद तक कि द्वारका में भी आप मुकुट धारण करते हो, द्वारका कृष्ण के ऊपर मोर पंख नहीं होता है, ना वो बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी और मोर पंख जो है त्रिभंग जो रूप है, ये तीन चीज़ें खास करके वृंदावन कृष्ण के स्वरूप में पाया जाता है। तो ये परिपृच्छा, ये जो मोर पंख द्वारका के, मथुरा के और अन्य वैकुंठ का जो मुकुट है उससे भी श्रेष्ठ है। मुकुट किससे बना था? अनेकों मणियों से, वज्र वैडूर्य से बना हुआ रहता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है मोरपंख के सामने, क्योंकि भगवान को मोरपंख अति पसंद है। और लसन नुकाय मतलब आपका जो मुख है ये अत्यंत लसन है, अति प्रसन्न है और आप हंस रहे हो। ये लसन मुखाय, योर फेस इज एन्चेंटेड बाय योर, सुसज्जित है। तो भगवान का मुखमंडल का ये जो सौंदर्य माधुरी है उसका वर्णन कर रहे ब्रह्मा जी। लसन मुखाय, आपका जो मुख है इन सब चीज़ों से सुसज्जित है और ये जो मुखमंडल है वो अनेकों स्वरूपों से जो वैकुंठ में निवास करते हैं या मर्यादा पुरुषोत्तम का जो स्वरूप है अन्य स्वरूपों से श्रेष्ठ है, इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं। वन्येष्टजे कवलवेत्र विशान वेणुम, वन्येष्टजे कवलवेत्र विशान वेणुम। अब ये क्या कर रहे हैं, इनका और आगे कर रहे हैं, आगे वर्णन करते हैं कि वन्येष्टजे वेयरिंग गार्लैंड्स ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर्स, उन्होंने क्या किया, वो एक माला धारण किए। ये जो वैजयंती माला है उससे श्रेष्ठ है और पारिजात पुष्प जो स्वर्ग में प्राप्त होता है उससे इनकी श्रेष्ठता को वर्णन करते हैं। वर्णन करने के बाद वेणु लक्ष्म्याश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया। तो इधर आगे बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्या है वो, मृदुपदे लक्ष्म्याश्रिये मृदुपदे। भगवान को मृदु पदे करके संबोधित किया गया है जिनका चरण कमल अति कोमल है। इसके पीछे अर्थ क्या है, अर्थ यह है कि श्रीपाद सनातन गोस्वामी बाद लिखते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान को एक गुरु के रूप में, श्रेष्ठ आराध्य देव के रूप में दर्शन कर रहे हैं। तो बड़े होते हमारे से उनका उम्र स्पष्ट रूप में खुलेआम बताई नहीं जाता है। अरे ब्रह्मा जी भी थोड़ा तकलीफ में, संकोच में, क्या है, एक तो सामने जो है वो बच्चा है और मैं तो एकदम वरिष्ठ हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, सामने एक बच्चा है और वो बच्चा साधारण नहीं है, वो मेरा गुरु है। अभी मैं उसको थोड़ी ना बोलूँगा बच्चा है, स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनको बोलना पड़ेगा ये तो बाल स्वरूप है। तो ये बाल स्वरूप बोलने से आदर नहीं रहेगा। तो ब्रह्मा जी को संकोच आया, उस संकोच में उन्होंने कहा मृदु पदे, आपका चरण कमल जो है बहुत मृदु है। इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका बाल गोपाल स्वरूप है, क्योंकि बच्चों का जो चरण है वो बहुत मृदु रहता है, बहुत कोमल रहता है। एक तरीके से भगवान की चरण कमलों का गुणगान भी हुआ और मर्यादा भी रख लिया, क्योंकि मर्यादा तो रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को बच्चा बोलने से थोड़ा सा वो आदर नहीं रहता है। तो ब्रह्मा जी को तो आदर भी मेंटेन करना था, क्योंकि वो तो ज्ञान मिश्र भक्ति, एक जगह कहा जाता है ब्रह्मा जी जो ज्ञान मिश्र भक्त है, उनको मालूम था कि ये साक्षात भगवान है। अगर कोई यशोदा मई होता तो बोलते थे बच्चा क्या कर रहे हो, लेकिन ब्रह्मा जी बोल नहीं सकते बात को। अगर साक्य में हो, साक्य रस में जो अन्य ग्वाल बाल है, क्या है, चलो हटो बैठो, ऐसा बोल सकते, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं बोल सकते, ब्रह्मा की नॉट सही देर, क्योंकि उनके अंदर अभी आदर भी है, भय भी है, भक्ति भी है और मधुरता को देख रहे हैं। ये बड़ा कन्फ्यूज सिचुएशन है ब्रह्मा जी का। श्री विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि दिस चैप्टर लेट्स हाउ ब्रह्मा दो मेंटेनिंग ए मूड ऑफ रेवरेंस, अभी भी वो रेवरेंस यानी आदर भावना को रखे है, इमर्स्ड हिमसेल्फ इन द ओशन ऑफ स्वीटनेस। ये इस प्रकार का जो भाव है ये कोई और भक्त के पास नहीं आया है, क्योंकि है ब्रह्मा जी रेवरेंस में, रेवरेंस मतलब आदर है, और अभी कहाँ डूबे हुए है, मधुरता में डूबे हुए है, अभी क्या करेंगे, कन्फ्यूज्ड है। वो कन्फ्यूजन में उन्होंने मृदु पदे कहा, अभी कहेंगे क्या, तो आदर तो है, आदर के द्वारा, आदर अगर कोई आदरणीय व्यक्ति है उनको बोल नहीं सकते बच्चा है, इनका उम्र इतना है, बोल नहीं सकते 5 साल का है, 10 साल का है, उम्र बड़े लोग छोटे लोगों का उम्र बोल सकते हैं, लेकिन छोटे लोग बड़े लोगों का उम्र नहीं बोल सकते। तो इधर ब्रह्मा जी के सामने कृष्ण तो उम्र छोटा है, अभी 5-6 साल का है और है तो बड़े, अभी तो वर्णन कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा मृदु पदे। इसके द्वारा आगे भी मृदु पदे के द्वारा ब्रह्मा जी इंगित कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी इंडिकेट द वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन बिकम्स फुल विथ एक्सटेसी। आपका जो है चरण कमल वृंदावन में अभी चलते चलते क्या हो रहा है, वृंदावन की प्रत्येक जी खास करके जो धरणी है वो बहुत आनंदित हो रही है, क्योंकि आपका चरण कमलों का जो चरण चिन्ह है उसको धारण करके वृंदावन अति प्रसन्न है। इतना प्रसन्न ही नहीं बल्कि ये जो वृंदावन इतना श्रेष्ठ हो गया है कि वैकुंठ से वृंदावन श्रेष्ठ हो गया है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान नंगे पैर नहीं चलते, भगवान वृंदावन में नंगे पैर चलते हैं। तो ये वृंदावन का जो सौभाग्य है ये इतना महान है कि आपका जो चरण कमलों का सीधा स्पर्श हो रहा है, भगवान वृंदावन में एक बार भी चप्पल नहीं पहने, ही डिड नॉट वेयर एन जूता। एक चीज़ जो नहीं किए भगवान वो है जूता नहीं पहने, अनेकों आभूषणों को धारण किए लेकिन जूता नहीं पहने। तो आपका जो मृदु चरण कमल है वो इतना महान है, ये वृंदावन को श्रेष्ठ बना दिया वैकुंठ से। और आगे कहते हैं कि पशुपांग जाया, और आप कौन हो, हु आर यू, पशुपा, पशु को पालन करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी कृष्ण को संबोधित करते हैं कि आप पशु को पालन करने वाले कौन है, नंद महाराज, उनके अंगज आया, उनसे उत्पन्न है, जाय मतलब जन्म लिए, तो उनके अंग से उत्पन्न हुए नंद महाराज को पशुपा कहा गया है। तो पशुपांग जाया, भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन ऐसे नामों से अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मान लो कि आपने किसी के प्रति अपराध कर दिया, नाराज़ है आपसे, तो उनको खुश करने के लिए सीधा कभी मत जाइएगा, वो जो जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ में लेके जाइए, तो तब आपसे खुश हो जाएंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं ना, कोई अगर झगड़ा हो जाता है तो मीडिएटर को लेके जाते हैं, तो ये ऐसा ही है। अभी नंद महाराज को ब्रह्मा जी ने मीडिएटर बनाया, तो हे भगवान आप कृष्ण अभी तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो, पशुपांग जाया, आप नंद महाराज के पुत्र हो। जैसे नंद महाराज का नाम लिया तो हो सकता है ब्रह्मा जी ने सोचा कि ठीक है मेरा अपराध माफ़ हो जाएगा। ये बड़ा स्पष्ट रूप में वर्णन हुआ है, खास करके ये जो लीला आगे जो चर्चा करेंगे उस लीला के बारे में, वो है गोवर्धन धारण करने की लीला में। इंद्र इतना बड़ा भयानक अपराध कर दिया, ब्रजवासियों को मारने का इतना बड़ा अपराध किया, मारने का प्रयास करने का अपराध किया, तो डर गए। वो डर के मारे उन्होंने क्या किया, अभी मालूम है अगर सामने जाएंगे कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इंद्र ने क्या सोचा, अभी मैं साथ में सुरभि को लेके जाता हूँ, गाय को लेके जाता हूँ। तो जब भगवान के प्रति अपराध होता है, कई भी अपराध होता है, तो भक्त का शरण लेने से अपराध जो है माफ होने का संभावना है। तो इसलिए इधर ब्रह्मा जी ने पशुपांग जाया भगवान को संबोधित किया, आप नंद नंदन हो, दूसरे शब्दों में कहा, क्योंकि संस्कृत की भाषा के हिसाब से पशुपांग जाया। तो पशुपांग जाया के द्वारा क्या सब क्या इंगित किया जाता है, श्री विष्णुनाथ ठाकुर कहते हैं कि नंद महाराज की जो श्रेष्ठता है, नंद यशोदा की श्रेष्ठता है, अन्य जितने भी वात्सल्य के जो भक्त है, अनेकों जो भक्तों से नंद और यशोदा की श्रेष्ठता का वर्णन इधर कहा गया है, पशुपांग जाया। तो आप जानते हो पिछली बार भी हमने इस बात को चर्चा किया था कि किस प्रकार नंद और यशोदा वसुदेव देवकी से उनका श्रेष्ठ स्थान है। कैसा श्रेष्ठ स्थान है, नंद महाराज यशोदा मई के सामने कृष्ण अनेकों बार अपनी ऐश्वर्य को दिखाया, लेकिन थक गए भगवान अपने आप को भगवान के रूप में साबित करने के लिए यशोदा मई के सामने। लेकिन जैसे देवकी के सामने कृष्ण प्रकट हुए तो देवकी स्वीकार कर लिया, अरे आप तो भगवान हो, आप तो सब कुछ चाहता है, सब प्रार्थना करने लगी। लेकिन फिर भी वात्सल्य था ही देवकी के पास, उन्हें कहा कि अरे आप तो इतने महान हो, आप सारे शक्ति का स्रोत हो। ये सब करने के बाद देवकी ने प्रार्थना की, हे भगवान आप जरा छोटे से बालक के रूप में हो जाइए ताकि मैं आपको छुपा लूँ। तो भगवान ने कहा, अरे आपने अभी तो कहा कि मैं सारा शक्तिमान हूँ, अभी क्यों छुपाना चाहते हो। तो देवकी ने कहा, मैं तो वात्सल्य हो तो मेरे पुत्र ना, भले आप कितनी भी हो लेकिन वो भाव आपको संरक्षण करने की रक्षा करने की भाव तो नहीं जाएगा। तो लेकिन फिर भी देवकी को ये ज्ञात था कि भगवान में कृष्ण जो है भगवान है, लेकिन यशोदा मई का वात्सल्य जरा सा भी इतना हद तक ये पिछले की लीलाओं में इस बात को चर्चा किया था, खास करके दाम बंधन लीला में, तो अन्य लीलाओं में जहाँ असुरों को वध करते हैं, तो श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि ऐश्वर्य शक्ति बार बार यशोदा मई की वात्सल्य की परीक्षा के लिए आती थी, और परीक्षा करने के समय करते करते ऐश्वर्य शक्ति हार के प्रणाम करके यशोदमय की वात्सल्य को प्रणाम करके चले गई। तो और कुछ उनका उनसे हो नहीं गया, उनको उनको परीक्षा लेते परीक्षा लेते जो टीचर ही प्रणाम करके चला गया, ऐसा समझ लीजिएगा। तो ऐसा स्थिति हो गया यश इनका। तो ये नंद महाराज यशोदमय की जो श्रेष्ठता है उसका वर्णन हो रहा है, ही इज ग्लोरीफाइंग दिस थिंग। तो ब्रह्मा जी ये जो पहला प्रार्थना है ये अति महत्वपूर्ण है। तो जिसके अंदर ब्रह्मा जी ने भगवान का ये सुंदर वपु है, बाल गोपाल वपु है, उसका वर्णन किया। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं इससे पता लगता है कि ब्रह्मा जी जो है वात्सल्य रस में डूबे हुए हैं और साथ साथ में उनको भगवान के प्रति आदर भी था, और वो चाहते थे कि ये जो वपु है, ये जो सुंदर वपु है गोपाल बालम, जो हम सत्यव्रत मुनि के प्रार्थना में देखते हैं, ये गोपाल बाल का ही ये रूप वर्णन किया जा रहा है। भले ब्रह्मा जी को भगवान ने अनेकों विष्णु तत्वों को दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन ब्रह्मा जी ये जो स्वरूप का जो वर्णन कर रहे हैं उनको ही प्रणाम कर रहे हैं, उनका शरणागत ले रहे हैं। इसके बाद अभी दूसरा श्लोक को उच्चारण करेंगे, मेरे बाद उच्चारण करने के प्रयास कीजिएगा। अस्यापि देव वपुषो मधुरग्रहस्य अस्यापि देव वपुषो मदनग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महितो विसुतुं मनसांतरेण नेशे महेतु विसितुं मनसांतरेण साक्षात् वैव किं तात्मसुखानुभूते साक्षात् वैव किमसि किमुतात्मसुखानुभूते अस्यापि देव वपुषो मदनोग्रहस्य अस्यापि देव वपुषो मदनोग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महितो वसितुं मनसांतरेण नेशे महितो वसितुं मनसांतरेण साक्षात् वैव किमुतात्मसुखानुभूते अस्यापि देव पुषो मदनोग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महितो वसितुं मनसांतरेण साक्षात् आत्मसुखानुभूते। तो अभी जैसे ब्रह्मा जी ने पहला श्लोक को उच्चारण किया, प्रार्थना किया, तो ब्रह्मा जी को डर लगा कि भगवान का आर्ग्यूमेंट, भगवान बहुत चतुर है कि नहीं, वो कवि है, भले ही ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया है, तो भगवान तो आदि कवि का पदवी किसने प्रदान किया, भगवान ने तो प्रदान किया ना, तो और है और चतुर है। वाक् चातुरता भगवान कृष्ण में ऐसा है कि वो कैसे भी किसी को घुमा के कुछ भी कह सकते हैं। तो जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हुए तो उनका ये जो लीला जो है बड़ा अद्भुत लीला है, अनेकों लीला है लेकिन ये जो लीला बड़ा अद्भुत है। कैसे है, जब खास करके निमाय पंडित के रूप में भ्रमण कर रहे थे मायापुर में, उस समय चाहे मान लीजिए उनके कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट्स थे, चर्चा हो रहा था, निमाय पंडित कुछ सिद्धांत को वर्णन करेंगे, सिद्धांत को बताएंगे, तब सभी लोग जो है बोलेंगे वाह वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वापस निमाय पंडित प्रवचन देंगे, बोलेंगे जो पहले उन्होंने जो करा था वो गलत है, अभी जो मैं कह रहा हूँ सही है। सब हाँ हाँ सही बात है, पहले गलत था अभी सही है। तो जैसे हाँ हाँ बोलेंगे वापस निमाय पंडित ऐसे साबित करते जो जो पहले कहा गया था वो गलत है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ सही है। तो इस प्रकार आर्ग्यूमेंट में तो एकदम बहुत निपुण है, उनको आर्ग्यूमेंट में कोई हरा नहीं सकता। तो दिन को रात को, रात को दिन करके साबित कर सकते हैं, ये भगवान का, तो भगवान ब्रह्मा जी को मालूम है ये, ही इज एक्सपर्ट करके। तो उनका आर्ग्यूमेंट आ सकता है सामने से, कौन सा आर्ग्यूमेंट आ सकता है? तो सोच रहे ब्रह्मा जी कि भगवान ऐसा आर्ग्यू कर सकते हैं, अरे 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 क्या ब्रह्मा जी मुझे क्यों प्रस्तुति कर रहे हो, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, आप तो बड़े वरिष्ठ हो, वरिष्ठों को छोटे लोगों को थोड़ी ना प्रस्तुति करना चाहिए। कभी देखा है बच्चों को बड़े लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, शरणागत होना चाहिए, आप तो बड़े हो, आप तो पितामह हो, तो मैं तो बालक हूँ, मुझे क्यों आप प्रार्थना कर रहे हो? दूसरी बात, आप तो आदिकवि हो, महान विद्वान हो, मैं तो मूर्ख हूँ। इतना ही नहीं, आप मैं तो भ्रमित हो गया था, आपका जो शक्ति को देख के आपने ग्वाल बालों को बछड़ों को चुरा लिया, और मैं तो कन्फ्यूज हो गया था, आपके द्वारा मैं भ्रमित हो गया हूँ, मैं विमोहित हो गया, तो मैं इतना बुद्धिहीन हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, तो आप ऐसा कैसे मुझे आप प्रणाम कर रहे हो? तो आगे कहते हैं कि आप सारा शक्तिमान हो, सारा जगत का सृष्टिकर्ता हो, मैं तो खुद चलना भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, आप मुझे क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने आगे कहा, यू आर द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल ब्लिस, आप सारे आनंद का स्रोत हो, और इतना ही नहीं, आप माया को नियंत्रक, माया का नियंत्रक हो। तो मैं अभी आपके माया के द्वारा प्रभावित होके मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, मेरे ग्वाल बालों को ढूंढ रहा हूँ, बच्चों को ढूंढ रहा हूँ, ऐसा भगवान जो है ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं? क्योंकि कभी ब्रह्मा जी को मालूम है, भगवत तत्व मालूम है, कृष्ण का ये स्वभाव मालूम है, ये जो है कभी कभी ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको जैसे व्यंग्य बातें करते हैं, तो वैसे व्यंग्य बातें कर सकते हैं, ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं और मुझे नीचा दिखा सकते हैं। इसके लिए जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ये दूसरा श्लोक कहते हैं, ये बात कहने के लिए, हे भगवान मेरा जो प्रार्थना है आपके प्रति ये संपूर्ण तरीके से उचित है, इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये समझो आपका स्थिति जो है मैं जानता हूँ, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। तो इसलिए आगे चलते ब्रह्मा जी ये दूसरा श्लोक को उच्चारण करते हैं। दूसरा श्लोक में सबसे पहला ये दूसरा लाइन में आखिरी शब्द है उसको लीजिएगा, कहा अपि कोपी होता है, कहा प्लस अपि कोपी हुआ, का मतलब ब्रह्मा जी को सूचित करता है, केशवा का प्लस ईशा प्लस वा, जैसे गुड़ा केशा आ केशा, का मतलब ब्रह्मा जी, यहाँ भी शास्त्र में ये शब्द आता है का करके, वो ब्रह्मा जी को सूचित करता है, ईशा मतलब शिव जी, आ मतलब विष्णु को सूचित करता है, आ केशा आ विष्णु का ब्रह्मा जी, और ईशा जो है वो शिव जी को सूचित करता है। ये गुड़ाकेश जो शब्द है उसके अंदर गुड़ मतलब स्वीटनेस, स्वीटनेस मतलब मधुरता, आ का ईशा, आ केशा में आ प्लस का प्लस ईशा है, आ सूचित करता है विष्णु को, का सूचित करता है ब्रह्मा जी को, और ईशा सूचित करता है विष्णु को, यानी वो व्यक्ति जिनके सामने ब्रह्मा विष्णु और महेश और शिव जी ये तीनों अपना जो ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं कर सकते, जो केवल अपना मधुरता को प्रकाशित कर सकते हैं, उस व्यक्ति को गुड़ाकेश कहा जाता है, गुड़ाकेश का एक अर्थ है, जैसे अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है, अर्जुन का मतलब क्या है, अर्जुन गुड़ाकेश का मतलब क्या है, अर्जुन को क्यों संबोधित किया गया गुड़ाकेश के रूप में? अस्तित्व में उनकी महत्ता को जानिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अर्जुन के सामने केवल अपना माधुरी को प्रकाशित कर सकते, अपना जो ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं कर सकते, ये स्थिति है अर्जुन का, साधारण स्थिति नहीं है। तो उससे पता लगता है कि का शब्द जो है ब्रह्मा जी को सूचित करता है, तो ब्रह्मा जी अपने आप को का कह रहे, मैं ना ने शे ना शे, ये जो ने शे जो शब्द है उससे क्या पता लग रहा है, मैं ना शक्नोमी, ना शक्नोमी मतलब मैं जान नहीं पा रहा हूँ, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। मही किसको जान नहीं पा रहा हूँ, आपका जो मही है, मही तो मतलब महिमा जो है, मैं समझ पा, मैं नहीं समझ सकता हूँ। क्यों क्यों नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपका जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, वो भूतमयस्य, ये कोपी के पहले एक शब्द है, वो भूतमयस्य, ये ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि इस संस्कृत में कोई भी श्लोक आता है, थोड़ा सा आपकी भक्तों की जानकारी के लिए, खासकर प्रचारकों की जानकारी के लिए, जब आप श्लोकों को पढ़ते हो सबसे पहला उसका अन्वय को जानिए। हम शब्दार्थ पढ़ते हैं, शब्दार्थ में अन्वय में अंतर है। जैसे मान लीजिए शब्दार्थ लिखा गया है अस्या, बाद में अपी, एक एक शब्द का अर्थ है, इसको शब्दार्थ कहा जाता है। अन्वय मतलब क्या है, सबसे पहला चीज़ किसको लेना चाहिए। अगर अन्वय में सबसे पहला का, बाद में अपी, नेशा, बाद में भूतमयस्या, ऐसा आएगा, वो लाइन में नहीं आएगा। कि संस्कृत भाषा का एक स्पेशलिटी ये है कि आप इन शब्दों को, का एक श्लोक में शब्दों को आगे पीछे भी करो तो उसका अर्थ बदली नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है अंग्रेजी में, आई एम ईटिंग, ऐसा एक शब्द है, एक लाइन है, ईटिंग आई एम, बोलेगा तो बोलेगा पागल है, वो आगे पीछे करेंगे तो उसका अर्थ चले जाता है, उसको कोई बेमतलब हो जाता है। लेकिन वैसे हिंदी भाषा में भी कोई एक शब्द है, मैं सो रहा हूँ, रहा हूँ, सो, ऐसा करके मैं ऐसा बोलूँगे तो कुछ अर्थ नहीं आता है, उसको बेमतलब हो जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है। जैसे कोई श्लोक लीजिएगा कोई भी, मत्त परतरम नान्यत, नान्यत परतरम मत्त, लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये स्पेशलिटी है भाषा का, ये ऐसी स्पेशलिटी कोई भाषा में नहीं है। तो उसका आगे पीछे भी करो अर्थ ऐसा का वैसा रह जाता है। उसके वजह से संस्कृत भाषा का जो छंद है वो परफेक्टली आ सकता है, उसका राग छंद एकदम परफेक्टली बैठ जाता है। तो जब आचार्यगण लिखते हैं या शास्त्र के प्रत्येक श्लोक है वो परफेक्ट मीटर में क्यों है, क्योंकि संस्कृत भाषा में इस प्रकार का सुविधा है। तो इसकी वजह से तो आप सीधा सीधा नहीं पढ़ सकते उसको, तो आगे पीछे से पढ़ना होगा। तो श्लोकों के अर्थ के अंदर जाना है तो सबसे पहला अन्वय को जानना होगा। तो अन्वय इस प्रकार है इसका, का मतलब ब्रह्मा जी, तो अपि नेशः, मैं ब्रह्मा होने पर भी, आप ये मत सोचो कि आपने जो आर्ग्यूमेंट करने वाले हो या सोच रहे हो मन में, भगवान ये सही बात है, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, हाँ आप, मैं तो अपनी माया दिखाने के लिए गया हूँ, मैं विद्वान हूँ, सब कुछ है, अपि होने पर भी नेशे न शक्नोमी, मैं आपको जान नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि आप भूतमयस्य न भूतमय न तो भूतमयस्य, क्यों, क्योंकि आप ये भौतिक तत्वों से नहीं बने हो। भूतमयस्य मतलब, भूत मतलब ये पंच महाभूत आप जानते हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो आपका जो शरीर है, ये जिसका वर्णन मैंने पिछले श्लोक में किया है, वो क्या है, वो न तो भूतमयस्य न भूतमयस्य, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से नहीं बना है। हे भगवान आप जानो कि मेरा जो शरीर है ये भूतमयस्य है, ये भौतिक तत्वों से बना हुआ है। ये भौतिक तत्वों से बना हुआ जो शरीर है ये आपका जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसको कौन जान सकता है, कौन कैसे देख सकता है, नहीं देख सकता, नहीं जान सकता है, ये ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि मैं इस शरीर को आवासितुम मनसांतरेण, अवसितुम मनसांतरेण, मैं आपको देख पा रहा हूँ साक्षात तयेव, आपका जो ये शरीर को मैं अभी देख पा रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी के सामने शरीर है कि नहीं, अभी भगवान का शरीर दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी कि भले ही मैं आपका शरीर को जान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे सामने आपका शरीर का दर्शन है, यह सुंदर रूप का दर्शन है। ये क्यों हो पा रहा है, केवल उसका एक ही कारण है, क्योंकि आपने मेरे ऊपर आपने अनुग्रह किया है। जो पहला लाइन का आखिरी शब्द जो है वो लीजिएगा अभी, मद अनुग्रहस्य वपुषे मद अनुग्रहस्य, आपका विशेष अनुग्रह के वजह से ही ये जो शरीर मुझे दिखाई पड़ रहा है, आगे ब्रह्मा जी आश्चर्यजनक बात कहते हैं कि अपना एक दीनता व्यक्त कर रहे हैं, हे भगवान ये जो शरीर है, ये जो सुंदर वपु है, इसका दर्शन बहुत दुर्लभ है। अनेकों भक्ति करने के बाद भी लोगों को ये दर्शन प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मैंने अपराध किया है, इस अपराधी व्यक्ति को आपने कैसे दर्शन करा दिया। ये आश्चर्य की बात है, इट इज़ माई वंडर, जैसे अद्भुत रस ब्रह्मा जी अनुभव करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये अद्भुत रस को इधर व्यक्त कर रहे हैं। ये अद्भुत बात है कि आपका ये जो अनुग्रह कि अपराधी व्यक्ति को भी आपने दिखाया, इसलिए इधर तात्पर्य में लिखा हुआ है अनुवाद में, माई डियर लॉर्ड नाइदर हैव एनीवन कैन एस्टिमेट द पोटेंशियल ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ यूअर्स विच हैज शोन सच मर्सी टू मी एंड विच अपीयर्स जस्ट टू फुलफिल योर डिजायर्स ऑफ प्योर डिवोटीज। ये जनरली खास करके आप अपने स्वरूप को शुद्ध भक्तों के सामने प्रकाशित करते हो, शुद्ध भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप इस रूप को धारण करते हो। इधर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए, इस बात को हमने कल भी चर्चा किया था कि याद नहीं मुझे, भगवान अनेक रूपों को क्यों धारण करते हैं? अनेक रूपों को धारण करने के पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य है कि अनेकों भक्तों को संतुष्ट करने के लिए। अनेकों प्रकार के भक्त हैं भगवान के, और अनेकों भक्त भगवान के प्रति अनेकों प्रकार की भावनाओं को रखते हैं, तो उस भावना के अनुसार उनका अलग रूप धारण करना पड़ता है, ही हैज़ टू टेक ए डिफरेंट फॉर्म। भगवान का अनेकों रूप क्यों है? इस प्रश्न का जवाब यह है, क्योंकि एक ही जवाब है, अनेकों भक्त है, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड डिवोटिस, अनंत भक्त होने के नाते अनंत प्रकार के भक्ति के भावनाओं को व्यक्त करते भगवान के प्रति, इसलिए वो भावना के अनुसार भगवान को अनेकों रूप धारण करना पड़ता है। तो भगवान जिस प्रकार एक घर में पिताजी हो दादाजी हो बच्चे से पोते से इतना प्रेम करते हैं, वो बच्चा बोलता है गधा बनो, गधा बन जाता है, घोड़ा बनो, घोड़ा बन जाता है, वो प्रेमवश कृष्ण अनेकों रूपों को धारण करते हैं भक्तों के इच्छा को पूर्ण करने के लिए। कई भक्त का ऐसा इच्छा है कि इस प्रकार का रूप में भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, वो रूप में दर्शन देते हैं। तभी ब्रह्मा जी यही बात कह रहे कि मैं तो भक्ति हूँ, मैं तो अपराधी हूँ, अगर अपराधी होने पर भी मेरा जो प्रिय रूप है उसका आप दर्शन कर रहे हो, करा रहे हो, ये केवल आपका अनुग्रह मात्र है, ओनली इट इज़ योर अनुग्रह। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी अपना जो दीनता को व्यक्त करते हैं, व्यक्त करके न शक्नोमी नेशे, इस श्लोक का व्याख्या जो हमने किया है वो सनातन गोस्वामी ठाकुर के हिसाब से किया, अभी श्री विश्वनाथ ठाकुर के अनुसार ये नेशे न शक्नोमी ये शब्द का व्याख्या करते हैं विश्वनाथ ठाकुर। तो ब्रह्मा जी भगवान को संबोधित करते हैं, कहते हैं भगवान मैं तो ये जो सुंदर वपु है, बाल गोपाल रूप है, इसको दर्शन करने का भी मेरे पास क्षमता नहीं है, लेकिन आपका अनुग्रह के वजह से इसका दर्शन प्राप्त हुआ है। लेकिन दूसरी बात यह है, अगर मैं ये जो बाल गोपाल का स्वरूप से आप अनेकों लीलाएं करते हैं, वो लीलाओं को ही नहीं समझ सकता हूँ, तो किशोर लीला को कैसे समझ सकता हूँ? किशोर लीला मतलब किशोर 11 साल के बाद, यानी जो भगवान को जो माधुरी लीला उनको समझ नहीं सकता हूँ। जब ये वात्सल लीला को ही नहीं समझ सकता हूँ, तो माधुरी लीला को कैसे समझ सकता हूँ? तीसरी बात ये है कि आपके ये जो शरीर से अनेकों प्रकार की लीला करते हुए आनंद को अनुभव करते हैं, मैं जब इस शरीर को ही नहीं समझ सकता हूँ, इस रूप को ही नहीं समझ सकता हूँ, आप जो आनंद को अनुभव कर रहे हैं वो आनंद को मैं कैसे समझ सकता हूँ? चौथी बात, जब आपके साथ अनेकों भक्त लोग अनेकों लीला करते हुए अनेकों प्रकार के आनंद को अनुभव करते हैं, जब मैं उन भक्तों का क्या आनंद है वो नहीं समझ सकता हूँ, तो आप जो आनंद अनुभव कर रहे हो उनको कैसे समझ सकता हूँ? अंततः कहते हैं कि मैं मनस अंतरेणा, मेरा मन जो है, इधर एक शब्द है आप देखेंगे कि मनसांतरेणा, मेरा मन जो है भौतिक चीज़ों से निवृत्त है, मेरा स्थिति सही बात है, मैं सारा वेदों को जानता हूँ, भौतिक चीज़ों से मेरा मन निवृत्त है, मेरा मन पूर्ण तरीके से कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड माइंड है। जब ये कंट्रोल्ड माइंड के द्वारा नियंत्रित मन के द्वारा भी मैं इस सुंदर वपु को मैं जान नहीं सकता हूँ, तो ऐसे लोगों की क्या कहना जिनका मन नियंत्रित नहीं है। तो इस प्रकार पांच प्रकार के अज्ञान को ब्रह्मा जी ने व्यक्त किया। इन दिस वे ब्रह्मा एक्सप्रेस्ड फाइव लेवल्स ऑफ इग्नोरेंस। थोड़ा सा कठिन लग सकता है लेकिन इसके अंदर बड़ा मधुरता है, लेकिन उसको थोड़ा सा समय देके हमको समझना होगा। इस बात के द्वारा हम आज का क्लास समाप्त करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, ये पांच प्रकार का इग्नोरेंस समझने के लिए प्रयास कीजिए। ये दूसरा श्लोक का आस्वादन करना है तो ब्रह्मा जी का जो इग्नोरेंस है उनका जो वो व्यक्त कर रहे, मैं आपको नहीं समझ सकता हूँ, ये एक शब्द में अगर सुनेंगे तो इतना आस्वादन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आचार्यों का टीका से हमको मालूम पड़ता है कि ये नेशे शब्द जो है, मैं कितना अज्ञानी हूँ उस बात का वर्णन हमको जानना चाहिए। सबसे पहला क्या है, मैं इस शरीर का तो, इस वपु को तो जान नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भूतमयस्या, मेरा भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर के द्वारा ये आध्यात्मिक शरीर जो है मैं उनका पहचान नहीं सकता हूँ। जब मैं आपका बाल गोपाल रूप को ही नहीं जान सकता हूँ, तो जो किशोर जो रूप है, जैसे आप अनेकों माधुरी रस का वर्णन, माधुरी लीलाओं को मैं कैसे समझ सकता हूँ। और तीसरी बात यह है, इसका मतलब क्या हुआ, श्रेष्ठ है, माधुरी लीला श्रेष्ठ है। तीसरी बात, जब आप अनेकों लीलाओं करते हैं, लीलाएं करते हैं, वो लीलाओं में अनेकों प्रकार के आनंद को अनुभव करते हैं, वो आनंद को मैं कैसे समझ सकता हूँ। जब ये रूप का ही ज्ञान नहीं है तो लीला से उत्पन्न हुआ आनंद का भी ज्ञान नहीं होगा मेरा। और चौथी बात यह है कि जब आप लीलाएं करते हैं, आपके भक्त लोग भी आनंद अनुभव करते हैं, जब मैं उस आनंद को भी जान नहीं सकता हूँ, भक्त लोग किस प्रकार आनंदित हो रहे हैं, इसलिए तो मेरा प्रॉब्लम आया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैं देख रहा था कि सारे ग्वाल बाल आपको ये झूठा खिला के आनंद ले रहे, तो वो आनंद को देख के मेरा कन्फ्यूजन हो, मैं समझ नहीं पाया। जब झूठा खिलाने में ग्वाल बाल इतना आनंदित हो रहे, तो इस झूठे को खाने में आपका जो आनंद है मैं पहचान नहीं पाया। तो ये चौथा है। पांचवा चीज़ ये है कि मेरा स्थिति इतना गया गुजरा हुआ नहीं है, मेरा मन जो है अंतरेणा, मनसांतरेणा उसका कहा गया है, विच इज़ कंट्रोल्ड एंड विदड्रॉन। मेरा मन जो है वो नियंत्रित है। नियंत्रित मन होने पर भी मैं आपका ये जो रूप का ज्ञान नहीं रख सकता हूँ, रूप का मेजरमेंट नहीं कर सकता हूँ, वो रूप का जो आस्वादन नहीं कर सकता हूँ, तो जिसका मन नियंत्रित नहीं है उनका क्या स्थिति है। इन दिस वे ब्रह्मा एक्सप्रेस फाइव लेवल्स ऑफ इग्नोरेंस। ब्रह्मा डिस्क्राइब्स कृष्णा बॉडी इन दिस वे टू प्रूव दैट सुप्रीम लॉर्ड कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय कोई भी ज्ञान योग अन्य माध्यम के द्वारा। भगवान का ये जो रूप है वो कोई नहीं समझ सकता, केवल उनकी कृपा के द्वारा ही समझ सकते। अनुग्रहस्या, ये अनुग्रह ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। केवल ब्रह्मा जी भगवान का अनुग्रह को समझे, इट बाय द मर्सी ऑफ यू ओनली आई एम एबल टू सी। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण, कुछ एक भक्त पूछ रहे थे कि प्रभु जी आप बता रहे हैं इन सब लीलाओं को बता रहे, इससे प्रैक्टिकली क्या समझेंगे हम लोग। प्रैक्टिकली यही समझेंगे कि हम संपूर्ण तरीके से कृष्ण के कृपा के ऊपर निर्भर है। दर्शन करते हुए भी ये ध्यान में रखना चाहिए, ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे, करने के बाद भी अपना अनुग्रह को भूले नहीं, कृष्ण का अनुग्रह को भूले नहीं। तो मंदिर में आते हम दर्शन करते, केवल कृष्ण का अनुग्रह, इट इज़ मर्सी ऑफ कृष्ण दैट वी आर हियर। ये बात को हमको समझना चाहिए, दैट मीन्स वी बिकम डिपेंडेंट। अभी अगला श्लोक यानी कल जो चर्चा करेंगे, ये अति महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, ए होय। जैसे कल रामानंद राय की चर्चा में हम चर्चा कर रहे थे, कि चैतन्य महाप्रभु ने पूछा रामानंद राय से कि आप बताइए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल ऑफ लाइफ, लेकिन शास्त्रों का उदाहरण देते हुए, शास्त्रों का श्लोक कोट करते हुए। तो रामानंद राय ने पांच श्लोकों को बोला, चार श्लोकों को चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट किया, बोला कि ये नहीं। जब ये पांचवा श्लोक को उन्होंने कहा, कौन सा श्लोक है, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त्येव जीवन्ति सन्मुखकृतिं मदीयं भवदीयवार्थां स्थानेषितं श्रुतितां तनुवान् मुनवे ये प्रायशो जितो विजितः तैस्त्रैलोक्यम्। ये श्लोक को जब ब्रह्मा जी ने, रामानंद राय ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ए हो ये ठीक है, स्वीकार करता हूँ। तो इसका मतलब है ये ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में ये श्लोक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्वीकार किया गोल ऑफ लाइफ के रूप में। तो ये हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। कोई कुछ प्रश्न है तो पूछिए, ऐसे टाइम ज़्यादा हो गया लेकिन फिर भी एक आध हो तो लेंगे, एनी क्वेश्चंस। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय।